जय धवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 15
ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम शुद्धात्मने नमः
नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोये सवसाऊणं वेदगवेदगवेदगम् अवेदगं वेदगंथसं सिद्धं सिद्धं परमियशिरसा वोच्चं वेदगमहाहियारम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 117 पर आ गए। 117 यहाँ उत्तर प्रकृति अनुभाग उदीरणा के सन्निकर्ष नाम का जो अपना अर्थाधिकार चल रहा है, अनुयोग चल रहा है, उसमें हमने आदेश में नारकियों में बात देखी थी, अब तीरियंचों में देखने जा रहे हैं। 117 पृष्ठ पर जो दूसरा पैराग्राफ है, जहाँ तीरियंचों में लिखा है 302 नंबर मिला ना। सन्निकर्ष का अर्थ क्या है मंजू बहन? हाँ, एक प्रकृति में जहाँ जघन्य अनुभाग उदीरना है, उसी समय उस जीव के अन्य प्रकृतियों में क्या पोजीशन है। तो तीर्यंचों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और 8 कषायों को मुख्य कर सन्निकर्ष का भंग ओघ के समान है। हम देख लेते हैं तीर्यंचों में मिथ्यात्व कैसा होगा, जब तो पहले गुणस्थान से पांचवें में जाने वाला और वो भी वेदक के साथ जाने वाला है, तो उसके तो अंतिम समय में लेना है। उस समय अन्य क्या है, अनंतानुबंधी जगन्य भी हो सकता है, जगन्य भी हो सकता है। सम्यक मिथ्यात्व का भी देखा था, सम्यक मिथ्यात्व में से चौथे में जाने वाले को जगन्य होगा। 8 कषायों को
यहाँ पे सम्यक मिथ्यात्व, अच्छा सम्यक चौथे में आने के,
चौथे से तीसरे से चौथे में। हाँ, 8 कषायों को मुख्य कर जो सन्निकर्ष भंग है, 8 कषाय अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान लेना, क्योंकि उन्हीं का जघन्य होगा, बाकी जो जघन्य है वो विशुद्धि के काल में होगा। आठ कषाय नहीं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। देखो ओघ में देख लेते हैं, थोड़ा पक्का हो जाएगा ना। 113 पृष्ठ पर जहाँ शुरू किया था, जहाँ मिथ्यात्व के जघन्य होती है, वहाँ अनंतानुबंधी का कदाचित उदीरक अनुदीरक, वो तो क्रोधमान मायालोभ की अपेक्षा किसी का उदीरक है किसी का नहीं है। यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, और अजगन्य का होगा तो शरस्थान पतित होगा। अब उस समय अन्य की क्या पोजीशन होगी? उस समय अप्रत्याख्यान यानी जहां मिथ्यात्व का जगन्य है, वहां अनंतानुबंधी का जगन्य देखा हमने, परंतु जहां मिथ्यात्व का जगन्य है वहां अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का जगन्य होगा क्या? नहीं होगा। तीरंचों में नहीं हो सकता उसका। जब जघन्य कब होगा? अप्रत्याख्यान का जघन्य तो चौथे गुणस्थान वाले के होगा, जब वो पांचवे के सन्मुख है। अन्य दो का संहिता संयत जीव जो है, जब विशुद्धि ज्यादा है तब होगा। तो यहाँ क्या उसकी पोजीशन होती है? जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है, अनंत गुणा अधिक है अजघन्य, उसमें षट स्थान नहीं लगाना। अनंतानुबंधी के साथ तो जगन्य या अजगन्य होगा और उसमें षट स्थान लग सकते हैं, परंतु अन्य बारह के बारे में वो अनंत गुणा अधिक वाला होगा, उसमें षट स्थान वाली नहीं होगी।
ये प्रत्याख्यान और सज्वलन में सर्वविशुद्ध जीव अब लोग उसको विश्वयुद्ध वाला लेना है क्योंकि वहाँ पे यथा योग्य सर्वविशुद्ध है,
जो यथा योग्य जहाँ होगी उसकी पांचवें गुण स्थान में ले लेना। वैसे जहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ तो मिथ्यात्व की उदीर्णा नहीं है, अनंतानुबंधी की नहीं है, है ना, इसकी है तो बारह कषायन की, तो उसका वहाँ तो जघन्य नहीं हो सकता, जघन्य होगा और वो अनंत गुना अधिक होगा, इस तरह इसको सोचना है। अब आगे पढ़ेंगे तीरियंचों में सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला। मंजुबेन, सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग उदीर्णा तीरियंचों में कौन सा जीव करता है? सम्यक्त्व प्रकृति के जघन्य करने वाला कृतकृत्य, तो कृतकृत्य वेदक में उसका जघन्य होगा। वो बारह कषाय और छह नौ कषाय उनका कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, जिसका उदय है उसका उदीरक होगा, और यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यानी वहाँ सम्यक्त्व का जघन्य है, यानी इतना क्षपणा का कार्य कर रहा है, करण लब्धि के परिणाम है, फिर भी क्या है उसके, उस समय उसका अन्य कषायों का जघन्य नहीं हुआ है। हमने कल बात की थी समय प्रकृति का, उसका क्षपण चल रही तो उसका जघन्य है, परंतु अन्य की उस पोजीशन पर जघन्य नहीं है। उसके तो पांचवें गुण स्थान वाले की जहां विशुद्धि ज्यादा होगी वहां पर होगा। और वो अनंत गुण अधिक होगा। पुरुष वेद का नियम से उदीरक है,
यहाँ पे नियम से बताए
हाँ, क्योंकि तीरियंचों में कौन होगा कृतकृत्य वेदक?
सॉरी, तीरियंच की बात है।
मनुष्य में भले वो तीनों वेद वाले करेंगे क्षपणा, परंतु जिसने तीरियंच आयु बांधी थी पहले, अभी मरकर तीरियंचों में कृतकृत्य वेदक के साथ उत्पन्न हुआ है, तो नियम से पुरुष वेद का है। यानी ये तो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा सम्यक्त्व का जघन्य लेना है। हाँ, जनरली हम कहते हैं कहीं कोई क्रिया होती है तभी, परंतु पांचवें गुणस्थान वाला भी क्षपणा तो वो भी कर सकता है, परंतु उस समय भी उसका जघन्य नहीं देगा।
पहले मैंने पूछा ना कि
अभी तो क्षपणा उससे भी आगे वाली पोजीशन है। नहीं नहीं, अभी यहाँ जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य कर दिया है उसने, वहाँ बारह कषाय का जघन्य नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि पांचवें गुणस्थान वाला भी क्षपणा के काल में वहाँ तो उसके होनी चाहिए थी बारह कषाय की, तो कदाचित होती है ऐसा भी लिखते, वैसा तो नहीं लिखा है।
नहीं, मेरा प्रश्न क्या था कि पांचवें गुणस्थान में जो रहता है जीव उसकी यथा योग्य सर्व विशुद्धि कभी होगी? अनंतानुबंधी के विषयोजना में होगी कि अपार्ट फ्रॉम दे दूसरे,
यदि वैसा होता विषययोजना में, विषययोजना भी मानेंगे, पर विषययोजना से क्षपणा का कार्य और विशुद्धि वाला है कि
नहीं, ये सपना की बात नहीं कर रहा।
क्यों नहीं कर रहे?
सम्यक्त्व का तो कभी कृतकृत्य वेदक का होता है, बाकी बारह कषाय में जब भी जघन्य होगा, आठ कषाय में तो अनंतानुबंधी के,
अभी तीरियंचों में विशुद्धि चौथे वाले की ज्यादा है कि पांचवे
वाले की ज्यादा है? नहीं, पांचवे वाले की ज्यादा है, पर पांचवे में भी विषययोजना वाला की ज्यादा।
अभी ऐसा तो कहीं कहा नहीं उन्होंने, अभी हम कैसे रूल बताएंगे आपको? हाँ, हम तो हमेशा कह रहे हैं कोई तो क्रिया होगी वहाँ तो विशुद्धि बढ़ती है अधिक। जैसे कांडक घात कहाँ होते हैं? स्थिति कांडक घात या अनुभाग कांडक घात, तो वो विषययोजना का कार्य वहाँ होता है तब होती है, ऐसे हम कहते हैं वहाँ पर। अब प्रथम उपशम वाला लेना है क्या, फिर वेदक वाला लेना है, ऐसा भी उन्होंने कहीं दो में डिफरेंस नहीं किया है, तो जो कुछ यथा योग्य होगा हम समझ लेंगे। जब तक वो स्वयं नहीं बताते हम कैसे कहेंगे वहां पर? तो पुरुष वेद का नियम से उदीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यानी ये जो कृतकृत्य वेदक यहाँ उत्पन्न हुआ है उसकी जो पुरुष वेद का जो उदीरक है वो नियम से अजगन्य और अनंत गुण अधिक है, क्योंकि पुरुष वेद का जगन्य किसके होगा तो पांचवें गुणस्थान वाले की, जहाँ विशुद्धि ज्यादा होगी वहाँ उसका होगा। प्रत्याख्यान क्रोध की आठ कषाय तो ऊपर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान लिए थे हमने, इसलिए अभी यहाँ प्रत्याख्यान की चल रही बात। प्रत्याख्यान क्रोध के जगन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, इसका अर्थ या औपशमिक होगा या वेदक होगा?
वेदक होगा ना,
तो अनुदीरक कैसा कहा सम्यक्त्व?
नहीं, हमने औपशमिक में तो हमने नहीं लिया क्योंकि हमने वेदक की अपेक्षा पहले से पांचवे में जाने के लिए किया।
मिथ्यात्व को थोड़े ही देख रहे हैं
हम, सम्यक्त्व के लिए।
अब मिथ्यात्व की उदीरणा की बात कहाँ चल रही है यहाँ पर?
अच्छा, प्रकृति प्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं।
प्रत्याख्यान का जगन्य किसके है तो पांचवें गुणस्थान वाले के, तो वहाँ वहाँ औपशमिक वाला भी होगा, वहाँ तो क्षायिक होने का सवाल नहीं है, तिर्यंच है।
हाँ।
क्या होगा?
नहीं,
चौथा ही गुणस्थान है ना, मैंने क्या पूछा, पांचवा हो सकता है क्या क्षायिक वाला? तो नहीं हो सकता। तो यहाँ कदाचित अनुदीरक का अर्थ क्या है? वो औपशमिक वाला भी हो सकता है, यानी वेदक या औपशमिक। यानी औपशमिक के काल में उसकी विशुद्धि ज्यादा बढ़ी थी तब प्रत्याख्यान क्रोध का जगन्य किया उसने। यानी यहाँ हम सोच सकते हैं, आपका जो बार बार प्रश्न है विसंयोजना का, तो दोनों ही में विसंयोजना होती है। विशुद्धि बड़ी है उसका अर्थ क्या है? करण परिणाम यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ भी अनंतानुबंधी के विसंयोजना औपशमिक सम्यक्त्व में जयधवला में तो स्वीकार है। इसी का अर्थ क्या है? सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। अनुदीरक कब कह सकते हैं हम उसको? औपशमिक सम्यक्त्व में, क्योंकि यहाँ क्षायिक का सवाल ही नहीं है। तिर्यंचों में पांचवें गुणस्थान में क्षायिक होने का सवाल ही नहीं है। यदि उदीरक है तो जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। क्योंकि उसका जगन्य कहाँ होता है तो हमने देखा था कृतकृत्य वेदक अवस्था, उस जगन्य की अपेक्षा। अब यहाँ प्रत्याख्यान का तो जगन्य हुआ है, परंतु सम्यक प्रकृति का यहाँ जगन्य नहीं है, अजगन्य है, वो भी अनंत गुण अधिक है, भले वो पांचवे गुणस्थान वाला है, वेदक समय दृष्टि है, और वो कृतकृत्य वेदक वाला है,
वो जगन्य वाला है।
हाँ, तो उसमें सम्यक्त्व प्रकृति का तो जगन्य हुआ था अनुभव, परंतु उस पोजीशन पर प्रत्याख्यान का जगन्य नहीं हो सकता। यानी हम कहेंगे विशुद्धि बहुत ज्यादा है वहां पर, इसलिए दोनों का ही जगन्य होना था। यदि विशुद्धि वहां ज्यादा है तो सम्यक प्रकृति का जगन्य करने की अपेक्षा ज्यादा है, उस विशुद्धि में प्रत्याख्यान का जगन्य नहीं हो सकता। पांचवे गुणस्थान में जो प्रत्याख्यान आवरण का उदय है वो अत्यंत मंद, वहां चौथे की अपेक्षा पांचवे वाले को मंद उदय है।
ऐसे भी ये कृतकृत्य वेदक है, उसका करण परिणाम तो सभी मनुष्य गति में ही खत्म हो जाएगा, उसके पीछे जो उदय बाकी रहता है सम्यक्त्व का।
हाँ, करण परिणाम समाप्त हुआ है।
हाँ,
और बस उसका अभी एक अंतर्मूर्त वाला कृतकृत्य वेदक चल रहा है। हाँ, करण परिणाम तो उसने पहले ही किए। क्रोध संज्वलन का नियम से उदीरक है, प्रत्याख्यान क्रोध का जो कर रहा है।
हाँ,
वो संज्वलन क्रोध का भी नियम से उदीरक है, जो जगन्य अनुभाग का उदीरक है या अजगन्य अनुभाग का उदीरक है। तिर्यंचों में तो दोनों का ही जगन्य इस पोजीशन पर हो सकता है। यदि अजगन्य अनुभाग का उदीरक है, अब यहाँ विशिष्ट रेंज में ही होगा, बहुत अनंत गुणा वाला तो एकदम डायरेक्ट नहीं होगा, तो जगन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजगन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। छह स्थान में भी अनंत गुणा वाला होता है, परंतु वो अनंत गुणा वाला ज्यादा ही होगा। नव नव कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, जिसका उदय है उसका उदीरक कहलाएंगे। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। जहाँ जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी, वहाँ अजघन्य इतना ज्यादा नहीं होगा फिर भी वो षट्स्थान में होगा। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार सात कषायों को मुख्य कर सन्निकर से जानना चाहिए। प्रत्याख्यान और संज्वलन में एक एक को रखकर उसके साथ यही लगा सकते हैं। अब तीर्यंचो में ही स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, ये वेदक या औपशमिक। पांचवा गुणस्थान। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। त्रिवेद में अनंत गुना अधिक क्यों कहा?
ये तो सामान्य तिरियंज की बात है ना, इसीलिए नहीं, सामान्य तिरियंज पे ये लिया है ना, तो सामान्य तिरियंज पे जो
त्रिवेदी के लिए नहीं है, त्रिवेदियों के लिए नहीं है। जैसे हमने प्रत्याख्यान का देखा वैसे यहाँ देखना है। स्त्रीवेदी यानी योनिमति तिर्यंचों में ये नहीं लगेगा।
ये सामान्य तिर्यंच की बात
देखो,
है।
देखो सामान्य तिर्यंचों में
का जगन नहीं होगा,
तिर्यंच इन जनरल बात के। तो वो जब स्त्रीवेद का जघन्य कर रहा है वो कब होगा? तो पांचवें गुणस्थान। और तिर्यंचों में, सामान्य तिर्यंचों में सम्यक प्रकृति का जघन्य कहाँ है? तो कृतवेद है, जैसे उन्हें प्रत्याख्यान क्रोध पर लगाया था। इसलिए जहाँ स्त्रीवेद का जघन्य है वहां पर सम्यक प्रकृति का जघन्य नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का जघन्य तो कृतकृत्य वेदक वाले के हैं। उसकी अपेक्षा यहाँ पर यानी स्त्रीवेद का उस यानी सम्यक प्रकृति का यहाँ पर अजघन्य होगा और अनंत गुणा अधिक होगा। हाँ, जघन्य की अपेक्षा, उसकी अपनी जघन्य की अपेक्षा, यानी कृतकृत्य वेदक वाले को जितना जो जघन्य हो जाता है अंतिम समय में, आवली और एक समय बाकी है, तब सम्यक प्रकृति का जो अनुभाग है, और यहाँ जब वो स्त्रीवेद की जघन्य कर रहा है उस पोजीशन पर उसका स्त्रीवेद का जघन्य नहीं हो सकता था। उसके तो वह तो स्त्रीवेद की उदीर्णा भी नहीं कहेंगे हम वहां तो। तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा है, यानी तिर्यंचों में सम्यक्त्व का जघन्य कब होता है? कृतकृत्य वेदक। और स्त्रीवेद का जघन्य कब होता है? पांचवें गुणस्थान वाले
छठे में,
विशुद्धि छठे नहीं
सॉरी
तिर्यंच है
यथा योग्य।
और ऐसा कोई पांचवें से छठे में जाता भी नहीं है, मनुष्य में भी है नहीं, आपने गलती से बताया। आठ कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, उदय की अपेक्षा। यानी जो स्त्रीवेद का जघन्य कर रहा है उस समय आठ कषायों की क्या पोजीशन है वो बता रहे। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। जैसे हमने प्रत्याख्यान क्रोध में लगाया था उसके साथ वेदों को लिया था, अब यहाँ वेद के साथ कषायों को ले रहे हैं। और यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। यानी जहाँ स्त्रीवेद का जघन्य है पांचवें गुणस्थान में तिर्यंचों के, उस समय आठ कषायों का भी जघन्य
हो सकता है, अजघन्य भी हो
सकता है, और अन्य भी, वो तो जो हमने देखे थे सभी नौ नौ कषायों का भी यहाँ जघन्य हो सकता है। इसी प्रकार दो वेदों को मुख्यकर सन्निकर्षक, ये डबल ना चाहिए, सन्निकर्षक जानना चाहिए। अब हास्य के जघन्य अनुभाव की उदीर्णा करने वाला, ये भी पांचवें गुणस्थान वाला होगा, विशुद्ध सम्यक्त, उसके सम्यक्त का भंग स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाव की उदीर्णा करने वाले के समान है। यानी सम्यक्त की उदीर्णा होगी या नहीं भी होगी, क्योंकि औपशमिक वाला भी हो सकता है, वेदक वाला भी हो सकता है, और यदि होती है तो अनंत गुणा अधिक होगी। आठ कषाय, तीन वेद, भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसका अर्थ क्या है कि जो आठ कषाय, नौ के नौ, नौ कषाय,
सभी का जघन्य,
सभी का जघन्य, ये पांचवे वाले को होगा। तो जहाँ एक का जघन्य है वहाँ अन्य का जघन्य हो भी सकता है, अजघन्य भी हो सकता है, और वो षट्स्थान वाला होगा। और सम्यक्त्व का जघन्य उसके कृतकृत्य में होगा, पांचवे वाले को उसका नहीं होगा। तो हमने देखा कि आठ कषाय, तीन वेद, भय, जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। रति का नियम से उदीरक है, जहाँ हास्य का है वहाँ रति का नियम से। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार रति को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, हास्य के बदले वहां रति रखें। तथा इसी प्रकार अरति और शोक को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसकी भी अगर उदीर्णा होती है तो वो भी इसी पोजीशन पर जघन्य हो सकती है। भय के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाले के सम्यक्त्व का भंग स्त्रीवेद के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाले के समान है। यानी सम्यक्त्व का उदीर्णा करने वाला भी होगा, नहीं भी नहीं करने वाला होगा, यानी वेदक भी हो सकता है, उपशमिक भी हो सकता है। और यदि अजघन्य का यानी उदीर्णा कर रहा होगा तो अजघन्य होगी, और जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा अधिक होगी। आठ कषाय और आठ नौ कषाय, भय को तो ले लिए ना, इसलिए आठ नौ कषाय लिए। कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। और यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। जहाँ जघन्य अजघन्य दोनों होते हैं वहाँ षट्स्थान पतित लगाना। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार जुगुप्सा को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ तक तो हमने सामान्य तिर्यंचों में बात देखी। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है, योनिनियों में पुरुषवेद और नपुसक वेद नहीं है। इनमें स्त्रीवेद ध्रुव करना चाहिए, यानी योनिनियों में। तथा इनमें आठ कषाय और सात नौ कषायों के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला, सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। और यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य का है। पहले जो मैंने बात ली थी, स्त्रीवेदी तिर्यंच है, यानी योनिमति तिर्यंच है, जहाँ वो आठ कषाय सात नौ कषायों की जघन्य कर रहा है, यानी कौन सा जीव है, पांचवें गुणस्थान वाला है, तो कहते वो वेदक भी हो सकता है, उपशमिक भी हो सकता है। तो वेदक सम्य दृष्टि के सम्यक्त्व की जो उदीर्णा हो रही है सम्यक प्रकृति की, वो जघन्य होगी कि अजघन्य होगी, मंदाबेन क्या कहते हैं, सम्यक प्रकृति की जघन्य होगी कि अजघन्य होगी वेदक सम्य दृष्टि है। तो वहां पर अन्य आठ कषायों का और सात नौ कषायों का वो जघन्य कर रहा है, उस समय वो औक्षमिक वाला होगा तो सम्यक प्रकृति को उदीर्णा ही नहीं है, वेदक सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा कर रहा है, तो वो जघन्य होगा कि अजघन्य होगा उस पोजीशन पर। और मगर स्त्रीवेदी में कृतकृत्य का सवाल कहाँ आया? तो योनिमतियों की अपेक्षा वहां पर उसका जघन्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी जघन्य उसका उसी पोजीशन पर हो सकता है, यानी होगा तो उसी पोजीशन पर होगा उसका, परंतु जहां जघन्य भी होता है वहां तो शरस्थानपतित वाला डिफरेंस पड़ सकता है, इसलिए जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। यहाँ लिखा है ना, लिखा
यहाँ पे हमने जो ये जघन्य लेते हैं तो उसकी अपेक्षा चौथे से पांचवें में जाने की विशुद्धि ज्यादा होगी कि प्रथम अक्षम वाला पांचवें में जाएगा उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरी जगह
आप वो मिथ्यात्व का सोच रही है, हम सम्यक प्रकृति की
बात सोच रहे हैं,
सम्यक प्रकृति की बात यहाँ सोच रहे
हैं। तो सम्यक प्रकृति का प्रथम अक्षम
पांचवे में जाने के पश्चात उस पांचवे गुणस्थान में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, चौथे से पांचवे में जाने वाला अभी चौथे में है, उसकी बात कहाँ है? उसकी बात तो हम अप्रत्याख्यान में लगाएंगे।
अच्छा, बाकी क्या करते हैं?
उसकी बात तो अप्रत्याख्यान में लगाएंगे, हम सम्यक प्रकृति में लगा रहे हैं। तो पांचवे की जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहां सम्यक प्रकृति का, यानी उसी पोजीशन पर जिसका जघन है तो उसी पोजीशन में हो सकता है, परंतु जो जघन्य करता है उसका थोड़ा डिफरेंस भी रह सकता है, अजघन्य भी उसके हो सकते हैं, इसलिए वहाँ जघन्य भी होगा अजघन्य भी हो सकता। और यदि अजघन्य है तो क्या होगा? जघन्य की अपेक्षा शस्थानपति अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है, ये योनिमतियों में ये विशेषता है, क्योंकि योनिमतियों में कृतकृत्य वेदक नहीं है। सम्यक्तो के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला उक्त जीव, उक्त जीव आता है ना, उक्त जीव ने कौन सा? योनिमत। आठ कषार छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक, जिसका उदय है उस अपेक्षा क्रोधमान माया लोभ में से। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यानी इसी पोजिशन पर आठ कषाय नौ नौ कषाय और सम्यक्त्व का जघन्य हो सकता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन लिए, जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। और यदि अजघन्य का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है। स्त्री वेद का नियम से उदीरक है, क्योंकि उक्त जीव का ही अर्थ ये योनिमति लिया है, योनिमति की बात चल रही है अंशों में।
ये स्त्रीवेद का जगह करता है, वहाँ पे उन्होंने सम्यक्त का अनुदीरक भी बताया है, वो हम प्रथम अक्षम की अपेक्षा लेते हैं, बराबर, तो वहाँ पे उसका जगह हो गया। और जब भी उदीरक है तो वो वेदक को लेना है, तो उसको भी कोई क्रिया में ही लेना पड़ेगा।
दोनों को ले लिया ना हमने, कितनी बार बताया अनंत अनुबंधी की दोनों ही विषय योजना कर सकते हैं।
अच्छा, दोनों की समान हो जाएगी,
एक बार प्रथम अक्षम समय तो प्राप्त कर लिया है तो इमीडिएट दो चार समय में तो नहीं करता है, अंतर्मुख तो चला जाता है, तो शुरुआत की जो कोई विशुद्धि है, जस्टी प्राइज है गुण श्रेणी वालों की, वो तो बीत गई है, तभी वो करे क्या या वेदक करे क्या, उसमें कोई फर्क नहीं है, नहीं तो जघन्य में फर्क पड़ता ना। इस पर से ही हम, इन्हें क्वेश्चन का सवाल ही नहीं, इस पर से ही हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की विशुद्धि समान है। यदि कहीं विशुद्धि अधिक होती तो वहां पर जघन्य कहते, यहाँ तो दोनों जगह कहे, औक्षमिक वाले को भी लिया और वेदक वाले को भी लिया। आप बार बार उसी प्रश्न पर दोबारा आ रहे हैं, आपका अभी समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ योनिमति की बात चल रही है, स्त्रीवेद का नियम से उदीरक है, जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि इसी पोजिशन पर ये जो पांचवें गुणस्थान है जहाँ उसका जो कोई विशेष कार्य चल रहा है, तो उस समय ही उसके जघन्य ये सभी में होगा, आठ कषाय में नौ नौ कषाय में। योनिमति के लिए सम्यक प्रकृति का भी जघन्य उसी पोजीशन पर हो सकता है, और यदि वो अजगन्य अनुभाग का उदीरक है तो जगन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजगन्य अनुभाग का उदीरक है। ये तो योनिमति की और पंचेंद्रिय तीर्यंचों की बात हुई। हाँ या अथवा एक ही जीव एक ही समय में जघन्य करेगा कि अजघन्य, या अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा कोई जघन्य करेगा कोई अजघन्य करेगा, क्योंकि उसके परिणाम तो जघन्य के लायक है, परंतु जैसे हमने देखा था विशिष्ट परिणाम से जितनी स्थिति बनती है तो उसमें किसी अन्य जीव के उतनी विशुद्धि से एक समय कम दो समय कम पल्ले के असंख्यात भाग समय कम तक की स्थिति बन सकती है। एक ही परिणाम अलग अलग स्थितियां बन सकती, वैसे यहाँ परिणाम तो वही है, उससे छह स्थान पतित अजघन्य भी हो सकता है या जघन्य भी हो सकता है।
तो हमने जो पहले जो विशुद्धि के स्थान देखे थे वहाँ पे दस स्थान देखे थे, प्रथम ऑप्शन समेत पीछे अनंत अनुबंधी की विश्व योजना, पीछे शाही करने को जा रहा है जो दर्शन होने की, तो वहाँ पे भी हम लोग को प्रथम ऑप्शन का जो विशुद्धि है वो पांचवें गुण स्थान में और समान होगी जो विश्व योजना कर रहा है और प्रथम ऑप्शन की, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से सभी ज्ञान चंद्रिका में हमने दस स्थान देखे थे
तत्व सब जगह लिखे हैं
विश्वति की अपेक्षा ज्यादा ज्यादा विश्वति,
कहाँ असंख्यात गुणा निर्जरा है उसके स्थान है वो,
उससे तो क्या स्थान नहीं है,
असंख्यात असंख्यात गुणा निर्जरा कहाँ पर है उसकी बात चल रही है।
हाँ।
अब कौन से प्रकृति का जघन्य कहाँ होगा वो तो वहाँ का विषय नहीं है, ये तो एडवांस विषय चल रहा है अपना।
अच्छा मैं सोच रहा था कि जो असंख्यात गुणा निर्जरा हो रही है वो विशुद्ध की अपेक्षा हम लोग ने देखी,
विशुद्धि होगी तभी तो हो रही है ज्यादा, वो तो नेचुरल है। परंतु चौथे की विशुद्धि कहो पांचवे की विशुद्धि कहो वो तो अलग अलग है, और कहाँ पर कौन से कर्मों में जो उदीर्णा कहाँ जघन्य होगी उत्कृष्ट होगी वो तो अलग बात है। ये तो बात हम बार बार वही तो देख रहे हैं, इसका विषय ही यही है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जीव 16 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, जहाँ जघन्य अनुजघन्य दोनों पॉसिबल है वहाँ तो षट स्थान पतित होगा। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा षट स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, क्योंकि ऐसे पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त नपुसक वेदी ही होते हैं। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। अब अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला कौन सा जीव लेना है? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त। वह जीव मिथ्यात्व तीन क्रोध और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, उदीरक है इतना कहा। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यानी हो गए तो इसी पोजीशन पर सबके जघन्य हो सकते हैं, परंतु उसमें थोड़ा डिफरेंस भी होगा अजघन्य वाला। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, ये उदय की अपेक्षा। वैसे छह कषाय इसलिए क्या, यहाँ स्त्री वेद पुरुष वेद का सवाल ही नहीं है, नपुसक वेद को ऊपर ले लिया ना नियम से उदीरक है करके, यहाँ छह कषाय नौ कषायों में कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार 15 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष कहना चाहिए। अब वही जीव लेना है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त। नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग का उदीरक जीव मिथ्यात्व का नियम से उदीरक है, क्योंकि ये सारी मिथ्या दृष्टि ही है, उदीरक है ये तो नक्की। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि यहाँ पर जब विशुद्धि ज्यादा है तब उसका जघन्य होगा उनके योग्य। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। 16 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यानी पंचेन्द्र तीरंच लब्धि अपर्याप्तक और मनुष्य अपर्याप्तकों में जब उस जीव की विशुद्धि है तब इन सबका जघन्य होता है, पर उसी पोजीशन पर अगर जघन्य भी पॉसिबल है। हास्य के उसी जीव की बात चल रही है उसमें भी वैसे लगाना पड़ेगा। हास्य के जघन्य अनुभाग का उदीरक जीव मिथ्यात्व नपुसक वेद और रति का नियम से उदीरक है। हास्य तो रति होगी और यहाँ लब्धि अपर्याप्तक है तीर्यंच और मनुष्य, तो मिथ्यात्व और नपुसक वेद का भी नियम से उदीरक होगा ही। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। 16 कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है। अब हास्य के साथ छह नौ कषाय नहीं लिएगी, जहाँ हास्य रति का उदय है वहाँ रतिशोक का हो ही नहीं सकता है, परंतु भय जुगुप्सा में पॉसिबिलिटी है ना, उदय होगा भी नहीं भी होगा। तो 16 कषाय और भय जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अरति और शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी वहां अरति को रखेंगे तो अरति के साथ मिथ्यात्व नपुसक वेद और शोक का नियम से उदीरक है सके, और फिर अन्य का उदीरक है भी नहीं भी वगैरह वगैरह। भय के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला यही पंचेन्द्र तीर्यंच लब्धि अपर्याप्त की बात चल रही है। जहाँ भय के जघन्य अनुभाग की उदीरणा है वह जीव मिथ्यात्व और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है। यहाँ तो जुगुप्सा का नियम से नहीं कह सकते, उसका उदय होगा भी नहीं भी होगा, तो मिथ्यात्व और नपुसक का नियम से है। जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। 16 कषाय और 5 नौ कषायों का नपुसक वेद तो ऊपर ले लिया, कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है और मनुष्यनियों में स्त्रीवेद ध्रुव करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने देखा था मिथ्यात्व का जघन्य जहाँ होगा कहाँ होगा, तो पहले से सातवें में जाने वाला है, उस समय अनंतानुबंधी का भी जघन्य हो सकता है, और नहीं होगा जघन्य तो अजघन्य छह स्थान वाला होगा। इस तरह से ये तो हमने ओग में देखा था ना, कहाँ किसका जो जघन्य होता है। अब देवों में मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला जीव 16 कषाय और 8 9 कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरना पड़ता है। लक्ष्मी बेन आपको ये बताना है, 16 के 16 कषायों को ले लिया अजघन्य में, और वो भी जघन्य से अनंत गुणा लिया अधिक, अनंतानुबंधी भी उसके साथ रखा, ऐसा क्यों? कृतकृत्य का कहाँ सवाल है, मिथ्यात्व का जघन्य सम्यक तो का नहीं ना, प्रथम उपशम बरोबर, बहुत अच्छा। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व में आवली प्लस एक समय बाकी है, तब विष का जघन्य मिथ्यात्व का, और अनंतानुबंधी का जघन्य उसके अंतिम समय में। इसलिए 16 कषायों को ले लिया वो अजघन्य का होगा और अनंत गुना अधिक होगा। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व को मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अनंतानुबंधी चतुष्क की उदीरना नहीं, किसको? सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी भी नहीं है और उसके मिथ्यात्व भी नहीं है। अभी देवों में ही सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग की उदीरना करने वाला जीव ये कृतकृत्य वेदक है। 12 कषाय और 6 9 कषायों का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। यानी जहाँ पर कृतकृत्य वेदक है वहाँ पर उसकी विशुद्धि इतनी नहीं है, इसके तो चौथा ही गुण स्थान है, परंतु बाद में जाकर अन्य किसी जीव की विशुद्धि ज्यादा है इससे, तो वहां पर उनका जघन्य हो जाएगा 12 कषाय और 6 9 कषाय। इसी प्रकार पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, वह नियम से उदीरक है जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। नियम से उदीरक है किसके लिए कहा? जो सम्यक्त्व का जघन्य कर रहा है उसके लिए, उसके साथ नियम से पुरुषवेद का उदीरक है। प्रेरणा बेन ऐसा क्यों कहा? हाँ नहीं, यहाँ देवों की बात चल, देवों में चले, देवों में सम्यक्त्व का जघन्य किसके है? वो श्रीवेदी होगा कि पुरुषवेदी, इसलिए पुरुषवेद का नियम से उदीरक है, परंतु वो जघन्य नहीं है उसका, उस पोजीशन पे वहाँ पुरुषवेद का जघन्य नहीं हुआ है। पुरुषवेद का जघन्य चौथे गुणस्थान वाला जो जहाँ उसकी विशुद्धि मैक्सिमम होगी वहाँ होगा। इसलिए जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणा अधिक अजघन्य बताया। अब अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग का उदीरक जीव 3 क्रोधों का नियम से उदीरक है। अब जहाँ अनंतानुबंधी का जघन्य हुआ है वहाँ अन्य 3 क्रोधों का जघन्य होगा कि नहीं होगा? मंदा बेन क्यों नहीं होगा? उदय है ना, जहाँ क्रोध का उदय हुआ अन्य 3 का क्रोध का उदय है ही, तो उसका जघन्य क्यों नहीं होगा? बोलो,
ये मिथ्या दृष्टि को है,
मिथ्या दृष्टि का अंतिम समय है
और वो तो
और उनकी तो अपने अपने यानी चौथे गुणस्थान में देव है, तो चौथे गुणस्थान में जाके उनका जघन्य होगा। मिथ्यात्व अवस्था वाले के अनंतानुबंधी का जघन्य हुआ,
बाकी का नहीं होगा,
बाकी का उनका जघन्य ऊपर के गुणस्थान चौथे में हो गया। तो अनंतानुबंधी क्रोध का ये समझ में आई बात, अनंतानुबंधी क्रोध के जघन्य अनुभाग का उदीरक जीव मिथ्या दृष्टि अंतिम समय वाला, क्योंकि अभी प्रथम उपशम प्राप्त करने वाला अंतिम समय वाला मिथ्या दृष्टि, वो 3 क्रोधों का नियम से उदीरक है। जहाँ एक क्रोध का उदय वहाँ अन्य 3 क्रोधों का उदय है ही। जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। 8 9 कषायों का कदाचित उदीरक है, और कदाचित अनुदीरक है। मंजूबेन आठ नौ कषाय क्यों लिए? हाँ आप क्या कहते क्या क्या देव में? हाँ तो हाँ चौथा गुणस्थान प्रत्येक प्रत्येक की कहाँ बात है? हाँ नपुसक वे से नहीं है, आठ नौ कषाय की बात चल रही थी, नौ कषाय यह नपुसक वे से नहीं है देवों में, इसलिए आठ नौ कषाय लिए। हाँ नींद खुल जाती है तो विषय ऐसा है ना, चलो अजगरने 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 हाँ एलर्ट कर हाँ 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 ये देवों में आठ नौ कषाय इसलिए लेना है कि नपुसक वेद होता ही नहीं वहां पर, इसलिए कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक। उदीरक वो भी क्योंकि उसमें जो जिसका जो उदय हो यथा योग्य उसको ले लेना, और यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा? ये तो मिथ्या दृष्टि है, उनका जघन्य तो चौथे में होगा तो यहाँ पर उनका अजघन्य ही होगा, और अगर जघन्य है तो अनंत गुणा अधिक ही होगा, लिखा है ना, जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। इसी प्रकार तीन कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। तीन कषाय ने तीन ये तीन अन्य तीन अनंतानुबंधी मानादि तीन यानी अनंतानुबंधी मानादि तीन कषायों की, ये केवल तीन कषायों की लिखने से कंफ्यूजन होता है ना, यानी अनंतानुबंधी मानादि तीन क्रोध पर लगाए ना उन्होंने, ऐसा ही मान माया लोक पर लगेगा। अब अप्रत्याख्यानवरण क्रोध की बात चलेगी, तो अप्रत्याख्यानवरण का जघन्य कब करता है देव? हाँ विषयी कौन सा गुणस्थान वाला? चौथे वाला। हाँ चौथे वाला इसका जघन्य, यानी अभी बारह कषायों को इसी पोजीशन पर ले, चौथे गुणस्थान वाला जहाँ ज्यादा विशुद्ध है वहाँ बारह कषाय और आठ नौ कषाय उनका यही पर होगा। सम्यक तो का उदीरक होगा भी नहीं भी होगा ऐसा भी कहेंगे, क्योंकि औपशमिक होगा तो उसका उदीरक नहीं होगा, और यदि उदीरक होगा तो उसका भी यहाँ जघन्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? उसका जघन्य कहाँ होगा? कृतकृत्य में होगा, तो वो डिफरेंस पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला जीव सम्यक्त्व, एक को एक्स्ट्रा हुआ सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, यानी ये वेदक उदीरणा करने वाला होगा उदीरक तो वेदक होगा या औषमिक होगा, यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। मंजूबेन आपको इसका अर्थ समझाना है मुझे, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का जहाँ जघन्य चल रहा है वहाँ सम्यक्त्व का अगर उदीरक है, यानी वो वेदक समय दृष्टि है सम्यक्त्व की उदीरणा कर रहा है, तो कहते उसके जघन्य की अपेक्षा वो अनंत गुणा अधिक है, ऐसा क्यों कहा? प्रेरणा बेन आप बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, क्रोध की बात नहीं चल रही, अप्रत्याख्यान क्रोध के साथ सम्यक प्रकृति का क्या, वो मिथ्यात्व की बात बता रहे हैं आप। कृतकृत्य में जघन्य है और उसकी अपेक्षा यहाँ पर अजघन्य अनंत गुना अधिक है। और यदि हम देवी में लगाएंगे तो उसका सम्यक का तो जघन्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके भी चौथे गुणस्थान की विशुद्धि तो दोनों की होगी उसके तो, यानी त्रिवेदी जो देव है देवियां हो उनके लिए तो सम्यक का जघन्य वही है जब उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, बस उतना ही, उसमें तो कृतकृत्य है ही नहीं है।
यहाँ पे अनुदेगक भी ले सकते हैं ना, स्त्रीवेद में जो नहीं, अरे देवियों में चार स्त्रीवेद का जो
उदीरक होगा तो की बात सुन, अनुदीरक तो औषधिक सम्यक्त्व के काल में होगा। अभी हम फिर पढ़ेंगे इसको। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जीव सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, इसका अर्थ ख्याल में आता है, वो औक्षमिक समय दृष्टि हो सकता है क्षौक्षमिक हो सकता है। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग की उदीर्णा करता है, क्योंकि सम्यक्त्व का जघन्य तो कृतकृत्य वेदक में होता है। दो क्रोधों का नियम से उदीरक है, कौन से दो क्रोध मंजूबेन? हाँ, प्रत्याख्यान और संज्वल, जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक, क्योंकि इसी विशुद्धि से सबका जघन्य हो सकता है, परंतु वो जघन्य में कुछ वेरिएशन होगी तो अजघन्य भी हो सकता है। तो यदि अजघन्य है तो क्या कहेंगे? अभी जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, आठ नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि ये चौथे गुणस्थान वाले की विशुद्धि से ये सब जो बाकी जो कर्म है उनमें जघन्य हो सकता है, तो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार ग्यारह कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये ग्यारह कषाय कौन कौन से है मयंक भाई? हाँ नहीं मयंक भाई देखना, हाँ अप्रत्याख्यान क्रोध छोड़ के क्या क्या रहेगा? अप्रत्याख्यान के कितने? तीन, फिर चार किसके? हाँ प्रत्याख्यान चार, संज्वलन चार और अप्रत्याख्यान अन्य तीन, बारह कषा में से एक का बताया, ऐसा ही अन्य बारह ग्यारह पर लगाना। अब आते हैं 122 पृष्ठ पर। त्रिवेद के जघन्य अनुभाग की उदीर्णा करने वाला जीव सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, मंजूबेन इसका अर्थ क्या है? देव की बात, देविया है और उदीरक है का अर्थ और अनुदीरक है उसका अर्थ क्या है? सम्यक प्रकृति का उदीरक है ने क्या है? वेदक समय और अनुदीरक है ने औक्षणिक समय दृष्टि। शाही को लेना कि नहीं लेना? श्री में जाते हैं। यदि उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक ओहो सॉरी, ये देवी की बात नहीं चल रही है, सॉरी
त्रिवेद का जघन्य जनरल में कभी होता है देव में?
हाँ जनरल देवों में, यानी वो अपना क्राइटेरिया देव है, देविया नहीं है। देवों में स्त्रीवेद की कौन करे तो देवी ही करे, और देवों में सम्यक्त्व का जघन्य कहाँ है तो ये पुरुषों में है और वो कृतकृत्य में, इसलिए उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा कितनी होगी, तो अनंत गुना अधिक होगा। जैसे हमने तीन इंचों में सोचा था ना, जनरल की बात अलग सोची थी। अब 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है उदय की अपेक्षा। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसका भी जघन्य है तब सम्यक्त्व का क्या होगा, पोजीशन उदीरक होगा भी या नहीं भी होगा, ये सब लगाना उसमें। हास्य के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाले जीव के, ये सामान्य देवों की बात चल रही है। सम्यक्त्व का भंग स्त्रीवेद के समान है, यानी कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। और उदीरक होगा तो क्या होगा, जघन्य की अपेक्षा अनंत गुना अधिक होगा। 12 कषाय स्त्रीवेद पुरुषवेद भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, यानी उनकी भी जघन्य इसी पोजीशन पर हो सकता है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। अब जहाँ हास्य का उदीरना है वहाँ रति का नियम से उदीरक है, जो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। हास्य के साथ रति ले लिया और अरति और शोक की मुख्यता से सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। यानी अभी अरति को रखो, उसके साथ शोक का नियम से उदीरक कहेंगे, वो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है। अब भय के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला 12 कषाय और 7 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, यही लेना है। चौथा गुणस्थान वाला लेना है। यदि उदीरक है, यानी उदय की अपेक्षा उदीरक है कि नहीं वो देखना। यदि उदीरक है तो जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। सम्यक्त्व का भंग स्त्रीवेद के समान है, ये बाद में लिया उन्होंने। यानी सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक होगा कदाचित अनुदीरक होगा, यदि उदीरक होगा तो क्या होगा, हाँ अनंत गुना अधिक अजघन्य। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी यहाँ तो एक भय या जुगुप्सा छोड़कर अन्य 7 को इकट्ठा कर दिया। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए, क्योंकि स्त्री वेद के अनुभाग की उदीरणा करने वाला उसके साथ लिए ना,
यही सन्निकर्ष।
हाँ, यानी ये पूरा ही ग्रुप लिया, ये सौधर्म ईशान तक तो ये बनता है। सनत कुमार कल्प से लेकर 9 ग्रह वेद तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता इनमें स्त्रीवेद नहीं है, इनमें पुरुष वेद ध्रुव करना चाहिए। यानी सब जगह उसको तो उदीरना तो होगी ही रहेगी पुरुष वेदिक। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सामान्य देवों के समान भंग है, इतनी विशेषता है। 12 कषाय और 6 नौ कषायों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। और यदि उदीरक है तो क्या कहेंगे, जघन्य का भी हो सकता है अजघन्य का, यानी जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य का। ऐसा क्यों कहा, हाँ लक्ष्मी देवी, अच्छा अच्छा देखो ये कहाँ की बात चल रही है, भवनवासी अंतर ज्योतिष है, वो किसकी कर रहा है जघन्य, बारह कषाय छनों कषाय की जघन्य कर रहा है। वह जीव सम्यक का उदीरक है कि नहीं है, तो होगा भी नहीं भी होगा, और होगा तो क्या होगा, जघन्य होगा तो क्या नहीं होगा, तो यहाँ लिखा है जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है, वेदक हाँ उदीरक है तो वो उसका जघन्य जघन्य हो सकता है ऐसा लिखा। नहीं नहीं वो प्रश्न नहीं है, हमने पहले देखा था कि वो अजघन्य ही होगा और अनंत गुना अधिक होगा सामान्य देवों में, और यहाँ लिख रहे हैं जघन्य भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को कहाँ सम्यक प्रकृति की उदीरण है। हाँ बोल कृतकृत्य वेदक भवनवासियों में नहीं जाता, वो उत्तर नहीं, यहाँ क्या पूछा, सामान्य देवों में जहाँ हम देखते हैं बारह कषाय और छह नौ कषाय, वहाँ यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो वो नियम से अजघन्य अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि वहाँ तो कृतकृत्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ के सम्यक्तों का जो जघन्य का उदीरक है अनुभाग का, तो वो तो वहीं पर है ना जघन्य उसके, जहाँ पर अन्य बारह कषाय वगैरह जो जघन्य होते हैं उसी पोजीशन पर सम्यक्तों का जघन्य होता है, क्योंकि इसमें कृतकृत्य वेदक वाला जन्म नहीं लेता है, इसलिए यहाँ कहा उसका जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी हो सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पर है। सामान्य देव में तो क्या कहा था, वह जघन्य ही है जो अनंत गुना है, क्योंकि उसका जघन्य तो कृतकृत्य में था, यहाँ कृतकृत्य नहीं है। या अथवा अजघन्य का है, क्योंकि यहाँ का जघन्य लेना है, वो कृतकृत्य वाला जघन्य यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया भवनवासी अंतर और ज्योतिषियों का चल रहा है, उनके लिए जघन्य है कि नहीं तो हो सकता है, क्योंकि जहाँ वो औक्षमिक वाला चल रहा है या जो कुछ है यहाँ उसकी विशुद्धि ज़्यादा है, उस समय उसके बारह कषाय और ये जो को नौ कषाय है उन सबका जघन्य इसी पोजीशन पर होगा, तो सम्यक्त्व का भी इसी पोजीशन पर होगा, सम्यक प्रकृति का भी, इसलिए कहते जघन्य या अजघन्य दोनों ऑप्शन आ गए। यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का उदीरक है। अब जो सम्यक प्रकृति की जघन्य कर रहा है, कहाँ की बात चल रही है, भवनवासियों की, यानी भवनत्रिक, जो सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करने वाला बारह कषाय और आठ नौ कषायों का क्या लिखा, कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है, जिसका उदय है उसका उदीरक होगा, यदि उदीरक है तो क्या होगा, जघन्य अनुभाग का उदीरक है या अजघन्य अनुभाग का उदीरक है, क्योंकि उनका जघन्य भी इसी पोजीशन पर किया जाता है। अब यदि अजघन्य अनुभाग का उदीरक है तो जघन्य की अपेक्षा क्या कहेंगे उसको, छह स्थान पति, क्योंकि इसी पोजीशन पर उनका जघन्य पॉसिबल है। भवनत्रिक के लिए ये जो बारह कषाय है और आठ नौ कषाय है, हाँ वहाँ जो छह का है ना उसका पहले उन्होंने कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है ऐसा जो कहे कह दिया था, जो जिस वेद में होगा उसी की उदीरणा करेंगे
या तो ठीक है, क्योंकि ये सनत कुमार की बात है, ये सनत कुमार महेंद्र से ऊपर की बात है ना, तो वहाँ पे तो
नहीं, भवनवासियों की बात चल रही है,
सॉरी
भवनवासियों की बात चल रही है, क्योंकि स्त्री वेद और पुरुष वेद की तो बात में बात करेंगे वो। ये हो गया अपना भवनवासियों का, अनुदिश से लेकर सर्वासी। हाँ हाँ,
नपुसक में छोड़ के बाकी के
ऊपर आठ, 122 बनवासी वेन्द्र ज्योति नवरी 12 कसाय 98 कसाय। हाँ वहाँ भी छः नहीं, आठ ही चाहिए था। अठनों को सही है ना वहाँ पर, लास्ट लाइन का लास्ट शब्द, ये छह के बदले वहां भी आठ ही चाहिए था। अच्छा है, देख लिया है, करेक्शन मिल गया। ये भवनत्री का हो गया ना, अभी कुछ रह गया क्या पीछे का? अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक सम्यक्त्व 12 कषाय और 7-9 कषायों का भंग आनत कल्प के समान है, इसी प्रकार अनाहरत मानना तक जाना चाहिए। ये सनत कुमार से लेकर नवग्रहविक तक बताए ना, तो ये आनत के समान यहाँ पर भी देख लेना। यहाँ तो 7 ही 9 कषाय लिए, त्रि वेद नहीं है, नपुंसक वेद का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए 7 ही ले गया। और यहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी समय मिथ्यात्व कुछ नहीं लिया,
सम्यक दृष्टि है,
सारे समय दृष्टि है, तो उनकी अन्य की उदीर्ण होने का सवाल नहीं है। हाँ, कितना नंबर दिया भावानुगम को?
23।
हाँ 23, क्योंकि 24 संयोग द्वार में ये 23 नंबर का। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है। अब कहते अप्पा बहुअम सूत्र नया, अल्प बहुत्व का अधिकार है, ये नंबर 24। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। वह अल्प बहुत्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यह सर्वप्रथम उत्कृष्ट का प्रकरण है। ओघ और आदेश के भेद से उसका निर्देश दो प्रकार का है। उनमें से ओग का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। सौवतिवाणुभागा मिच्छत्तस्य उक्कस्य अनुभाग उदीर्णा, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग चाहिए ना, प्राकृत हो गया अनुभाग, मिथ्यात्व की नल का। हाँ, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण सबसे तीव्र अनुभाग वाले, सबसे तीव्र अनुभाग है जिसका, वह सबसे तीव्र अनुभाग वाली कहलाती, सबसे तीव्र शक्ति से संयुक्त है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, वह कौन है? तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण, क्योंकि वह सर्व द्रव्य विषय श्रद्धान गुण का प्रतिबंध करती है। सर्व द्रव्य विषय श्रद्धान गुण का प्रतिबंध करती है, यानी बिल्कुल अतत्व श्रद्धान कराती है, ऐसा है ना, वो सम्यक्त्व नहीं होने देती। किस संबंधी श्रद्धा नहीं होने देती?
द्रव्य,
सभी द्रव्य। सौद्रव्य विषय सद्धन गुण परिबंधता दो। अब अनंतानुबंधी की पढ़ेंगे हम। अनंतानुबंधिनम अन्नदरा उक्कस अनुभाग उदीर्णा तुलना अनंत गुणहीना, उससे अनंतानुबंधियों की अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा परस्पर समान होकर अनंत गुणहीन है। किससे समान है, किसका, किसके साथ समानता है? मिथ्या तो के साथ, लक्ष्मी के परस्पर है, किसमें? मंदाबेन क्रोधमान माया लोक अनंत अनुबंधी के चार परस्पर समान है। परस्पर यानी क्रोधमान माया लोक में परस्पर समान। उससे यानी मिथ्यात्व के उत्कृष्ट से, उससे का अर्थ क्या, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा से अनंतानुबंधियों की अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा परस्पर समान होकर क्रोधमान माया लोभ में क्या लिखा है, अनंत गुणी हीन है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट से अनंतानुबंधियों का उत्कृष्ट अनंत गुणा हीन है, ये बात बताना। सबका अनुभव समान है हाँ, और उसमें वो संक्रमण भी चलता है, कुछ भी करो आप केवल हमें सब करने के लिए छूट है, फाइनल रिजल्ट वही होने वाला है। हमें तो क्रोध ही कसाय लगती है, हमें कोई कसाय लगता ही नहीं, होने दो ना उदीर्णा, या तो उत्कृष्ट अनुभव उदीर्णा तो उसका तो अनुभव सत्व भी सबका समान हो सकता है कि नहीं हो सकता।
माया और लोभ नहीं लगता है
क्योंकि अभी उसका कारण बताए, मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभव से इनका उत्कृष्ट अनुभव अनंत गुणे हीन रूप से अवस्थित देखा जाता है। शंका, यहाँ पर अनंतानुबंधी मान आदि की अनुभाग उदीर्णा स्वस्थान में समान है ऐसा जो कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि इनके अनुभाग सत्कर्म का विशेष अधिक रूप से अवस्थान देखा जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशेष अधिक सत्कर्म से अथवा विशेषहीन सत्कर्म से समान परिणाम निमित्तक उदीर्णा सदृश होती है ऐसा स्वीकार किया। क्या कहना चाहते हैं कि सत्ता में जो पड़ी है हर एक की अनुभाग वो अलग अलग है, मानादिक का लिखा है ना वो घटित नहीं होता है, क्रोध मान माया लोभ में जो अनुभाग का जो है, क्योंकि हमने देखा था ना लास्ट में जाके नवे गुण स्थान में अश्वकर्ण होता है, यानी लोभ की अनुभाग सबसे हीन हो जाता है, क्रोध में ज्यादा फिर मान में फिर माया में, फिर पहले तो ऐसा नहीं था उसका वो क्रोमा लोमा ऐसा कुछ लोमा क्रोमा था, लोभ का ज्यादा थे फिर माया का फिर क्रोध का फिर मान का, तो कहते हैं उसका सत्ता में तो सदृश नहीं था तो उदीर्णा सदृश कैसे कहते हैं, ये इसका प्रश्न है। इसके लिए समाधान क्या का, ये कोई दोष नहीं क्योंकि विशेष अधिक सत्कर्म से, जहाँ सत्कर्म यानी सत्ता वाला जो अनुभाग है अधिक हो, और विशेषहीन सत्कर्म से, और कहीं सत्ता वाला विशेषहीन है परंतु अनुभाग किस रूप में अनुभाग की उदीर्णा हो रही है वो तो परिणाम पर निर्भर है, तो कहते समान परिणाम निमित्तक यानी निमित्त से होने वाली उदीर्णा सदृश होती है ऐसा स्वीकार किया गया। सत्ता में हमने पहले भी देखा था अनुत्कृष्ट होते ऐसा नहीं कह रहे कि सत्ता में क्रोध, अभी हम लेते हैं लोभ की सबसे ज्यादा है और क्रोध की उससे कम है, परंतु दोनों की उदीर्णा होते हुए अनुभाग की समानता हो सकती है क्योंकि वो परिणाम के निमित्त से उनका अनुभाग उदीर्णा होती है। उत्कृष्ट संकलेश से जहाँ क्रोध की उत्कृष्ट उदीर्णा होती है अनुभाग उदीर्णा, वहीं पर लोभ की भी उतनी उत्कृष्ट हो सकती है। हमने पहले भी देखा था कि जहाँ अनुत्कृष्ट सत्कर्म है उस जीव के उत्कृष्ट संकलेश हो गए तो उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा हो सकती है, ये पहले एक बार अपना विषय चला था। यह अर्थ ऊपर संज्वलन कषाय आदि के विषय में भी लगा लेना चाहिए, आगे भी ऐसा ही हो, क्रोधमान माया लोभ में जो सत्ता की अपेक्षा अनुभाग में डिफरेंस होगा परंतु उदीर्णा विशिष्ट परिणाम से विशिष्ट उतनी उदीर्णा होगी उसकी। अब आगे संजलन
ये सत्ता में तो प्रकृति विशेष की अपेक्षा होता है ना, अनुभाग और उदय हाँ। की अपेक्षा जो उदय है,
उदीरणा की बात चल रही
है वहाँ पे उदय की अपेक्षा हाँ। जो परिणाम है
तो संजलनानम अन्नदरा उक्कस अनुभाग उदीरणा अनंत गुणहीना, उससे संज्वलनों की अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा अनंत गुणहीन है। अभी चार संज्वलन के आपस में समान कहेंगे भी और या नहीं भी कहेंगे, क्योंकि अभी उत्कृष्ट की उत्कृष्ट में तो समानता होगी, जघन्य में तो अलग अलग होगा। अनंत गुणहीन बताए क्योंकि दर्शन और चारित्र का प्रतिबंध करने वाली अनंतानुबंधियों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा से मात्र चारित्र का प्रबंध करने प्रतिबंध करने वाली संज्वलनों की उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा के अनंत गुणे हीन होने में कोई विरोध नहीं है। अनंतानुबंधी दर्शन और चारित्र दोनों का प्रतिबंध करती है और ये चारित्र का प्रतिबंध करती है।
ये अनंतानुबंधी चारित्र का, चारित्र का भी अरद श्रद्धा का भी कर,
ऐसा नहीं कि दर्शन को रोकती है चारित्र को होने देती है, ऐसा थोड़ा ही है।
नहीं मैं श्रद्धा की अपेक्षा कर रहा
हूँ।
दोनों है ना, उसको चारित्र मोहनीय है उसका नाम क्या है, चारित्र मोहनीय के दर्शन मोहनीय
चारित्र,
फिर भी श्रद्धा में भी वो प्रतिबंध करता
है।
पच्चखाना वरणीयानम उक्कस अनुभाग उदीर्णा अन्नदरा अनंत गुणहीना, उससे प्रत्याख्यानावरणी कर्मों की अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन है।
चार नंबर ना,
क्योंकि यथाख्यात संयम के विरोधी संज्वलनों के अनुभाग को देखते हुए शौक्षमिक संयम का प्रतिबंध करने वाले प्रत्याख्यान कषाय का अनुभाग अनंत गुणहीन सिद्ध होता है, यह न्याय है। हमें उल्टा लगता है ना, संज्वलन है उसका अनुभव ज्यादा तीव्र है, उत्कृष्ट अनुभव। वैसे जो कर्मों का बंटवारा था उसमें भी ऐसा ही था,
पहला अरे अनंत अनुबंधी पीछे
अपचखावरणीयानम उपकस अनुभाग उदीर्णा अन्नदरा अनंत गुणहीना, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय कर्मों की अन्यतर उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन है। क्योंकि सकल संयम का घात करने वाले प्रत्याख्यान कषाय के अनुभाग से देश संयम के विरोधी अप्रत्याख्यान कषाय के अनुभाग का अनंत गुण हीन रूप से अवस्थान देखा जाता है। अनंतानुबंधी को पहले लिया कि दर्शन और चारित्र दोनों का लेते हैं, फिर संज्वलन को लिया यथाख्यात संयम का विरोध लिया, अप्रत्याख्यान को लिया पहले प्रत्याख्यान को लिया संज्वलन के बाद
पीछे अप्रत्याख्यान,
हाँ फिर अप्रत्याख्यान। नौ से वेदस्य उक्कस अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीना, उससे नपुसक वेद की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा अनंत गुणहीन है। क्योंकि कषायों के अनुभाग से नौ कषायों का अनुभाग अनंत गुणहीन सिद्ध होता है। यह न्याय है, ये उसको मात्र स्वामित्व को नहीं देखना, प्रत्येक प्रकृति का अपना जो अनंत उत्कृष्ट जो अनुभाग है वो कितना है वो भी अलग अलग है। और यहाँ तो और उसके आगे चलकर उदीर्णा की बात चल रही है। अरति उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे अरति की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि वह अरति मात्र की कारण है। परंतु नपुसक वेद का अनुभाग इष्टपाक की अग्नि के समान है। ये समझते इष्टपाक क्या होता है?
तुमने देखा था ना, रबर के जैसा।
देखो तीन वेदों को तीन अलग अलग उपमाएं दी। पुरुष वेद के लिए वो तृण की, तृण जलता है तो जल्दी जलता है, जल्दी बुझ भी जाता है। फिर स्त्री वेद के लिए कंडे की अग्नि, यानी वो तो छाना होता है ना, छाना बोलते हैं मराठी में, वो गौरी कहते हैं
छाना,
वो काउडंग होती है ना, उसका जो सुखा के बनाते उसको, उसकी अग्नि के समान। और नपुसक वेद के लिए इष्ट पाके ने ईट, ईट जो भट्टी में ये गर्म करते हैं ना,
वो ठंडा होने,
अग्नि के ऊपर अगर तपाते हैं ईट तो वो जल्दी ठंडी नहीं होते, तो इष्ट पाक की अग्नि के समान। या भट्टी में होती है ऐसे भी अग्नि पर तपाते हैं ना कभी कभी, वो सेक देने के लिए ईट का सेक देते, कभी सुना है कि नहीं?
सेक कर,
वो डायरेक्ट अग्नि के ऊपर रखते उसको गर्म करते हैं, तो अधिक लंबे काल तक वो गर्म रहते हैं। नहीं समझे? नहीं मालूम?
लिया नहीं।
फिर वो कपड़े में बांधते हैं, फिर उसका सेक देते, उसकी बात है ना, ईट गर्म तो
करते।
अब अरति की बात, यानी अरति से नपुसक वेद वो अनंत गुणा ज्यादा है, नपुसक वेद से ये अनंत गुणा हीन है। अरति की बात, सोगस्य उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे शोक की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि वह अरति पूर्वक होती है। ये प्रदेश के बंटवारे की बात तो अपनी हुई थी, किसमें अधिक चला जाता है क्या होता है, वहाँ भी पहला वेदों को चला जाता है, बाद में वो हास्य या शोक को जाएगा, रति या रति को जाएगा, और बाद में भजगुप्सा को जाएगा, ऐसा लिया था। भय उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे भय की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि जिस प्रकार शोक का उदय बहुत काल तक दुखोत्पादन की शक्ति से युक्त है, उस प्रकार भय के उदय में बहुत काल से प्रतिबद्ध दुख के उत्पादन की शक्ति का अभाव है। यानी भय से बहुत काल तक दुखी नहीं होता, शोक से बहुत काल तक दुखी होता रहता है। जुगुप्सा को पढ़कर अभी यहीं रुकेंगे हम। दुगुण छाए उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीना, उससे जुगुप्सा की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अनंत गुणहीन है, क्योंकि भय के उदय के समान जुगुप्सा के उदय से मरण नहीं पाया जाता। चलो यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देख हो। अश्विन भाई,
नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जानं, नमो लोहे सुप्रसावणं।